पृष्ठ संख्या 47। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, यूरोप, अमेरिका तथा जापान की साम्राज्यवादी गतिविधियों की चर्चा करते हुए हम एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका की कुछ घटनाओं का जिक्र कर चुके हैं। जब से साम्राज्यवादी देशों ने इन महाद्वीपों पर अपना प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष नियंत्रण स्थापित किया, तभी से वहाँ उन्हें प्रबल जनविरोध का सामना करना पड़ा। कालांतर में इस विरोध के रूप में बदलाव आया और उसने राष्ट्रवादी आंदोलन की शक्ल बना ली। इन आंदोलनों का उद्देश्य प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष विदेशी नियंत्रण को समाप्त करना था। इन आंदोलनों से अनुप्रमाणित देशों ने अन्य राष्ट्रों के साथ समानता के दर्जे का दावा करते हुए यह संकल्प व्यक्त किया कि हम अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण आधुनिक पद्धति पर करेंगे तथा अपनी राजनीतिक एवं सामाजिक प्रणालियों की रचना लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर करेंगे। इन राष्ट्रवादी आंदोलन को बहुधा अपने ही देश की युग जर्जर राजनीतिक व्यवस्थाओं के खिलाफ जूझना पड़ा और साथ ही प्रगति के मार्ग में बाधक तत्वों के विरुद्ध भी संघर्ष करना पड़ा। एशिया में राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय की अपनी खास विशेषताएं थीं। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन उपनिवेशों में आरंभ होने वाले प्रथम राष्ट्रवादी आंदोलन में से एक था। 20वीं सदी के आरंभिक वर्ष आते आते राष्ट्रीय मुक्ति के आंदोलन एशिया के अन्य भागों में भी उभरने लगे, खास तौर से हिंद चीन, इंडो चाइना, इंडोनेशिया, फिलीपींस, कोरिया तथा ईरान में। ईरान में लगातार कई विद्रोहों के बाद वहां के शाह को ईरान की शासन व्यवस्था को मजलिस नामक संसद से युक्त संवैधानिक राजतंत्र का रूप देने को बाध्य होना पड़ा। लेकिन इसके शीघ्र बाद विदेशी सहायता से, खास तौर से रूस की मदद से, शाह ने अपना निरंकुश शासन फिर से स्थापित कर लिया और मजलिस को भंग कर दिया। चीन में राष्ट्रीय जागरण अनेक क्रांतिकारी संगठनों के रूप में प्रकट हुआ। ये सब संगठन चाइनीज रिवॉल्यूशनरी लिंग, चीन क्रांतिकारी संघ में संगठित होकर एकजुट हो गए। डॉक्टर सुन यात सेन इस लीग के अध्यक्ष थे। चीनियों के राष्ट्रीय जागरण में तथा विभिन्न क्रांतिकारी समूहों के एकीकरण में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। लीग डॉक्टर सुन यात सेन द्वारा प्रतिपादित तीन सिद्धांतों का अनुसरण करती थी। ये तीन सिद्धांत थे राष्ट्रवाद, लोकतंत्र तथा आजीविका। आजीविका का उल्लेख कभी-कभी समाजवाद के रूप में भी किया जाता है। स्पष्ट शब्दों में कहे तो इन सिद्धांतों का मतलब था 17वीं सदी के मध्य से चीन पर शासन करते आ रहे मांचू राजवंश की हुकूमत का अंत करना, लोकतांत्रिक गणतंत्र की स्थापना करना तथा भूमि का न्यायसम्मत वितरण करना। 1911 में दक्षिणी चीन में क्रांति की जबरदस्त लहर आई और 1 जनवरी 1912 को चीन को गणतंत्र घोषित कर दिया गया, जिसका मुख्यालय नानजिंग, नानकिंग को बनाया गया। डॉक्टर सुन यात सेन को इस गणतंत्र का अध्यक्ष बनाया गया। इसी बीच उत्तरी चीन में चीन को एक संवैधानिक राजतंत्र का रूप देने के लिए कुछ कदम उठाए जा चुके थे। जनरल युआन शिकाई को प्रधानमंत्री बना दिया गया था। बीजिंग, पिकिंग से उत्तरी चीन पर नियंत्रण रखने वाली संवैधानिक राजतांत्रिक सरकार तथा नानजिंग से काम करने वाले गणतंत्र के बीच संघर्ष की संभावना से बचने के लिए एक समझौता किया गया। मांचू शासक ने राजपद छोड़ दिया और इस प्रकार चीन में सम्राट के शासन का अंत हो गया। युआन शिकाई को राष्ट्र अध्यक्ष घोषित कर दिया गया और उसे संसद की बैठक बुलाने का दायित्व सौंपा गया। विदेशी ताकतों ने युआन शिकाई को अपना समर्थन दिया। 1913 में उसने संसद की बैठक बुलाई, लेकिन शीघ्र ही उसे भंग कर दिया। वह स्वयं को सम्राट घोषित करने का सपना देख रहा था। इस बीच डॉक्टर सुन यात सेन ने गोमिदांग, कुओमिंतांग या राष्ट्रवादी दल का गठन करके दूसरी क्रांति का आह्वान कर दिया था। युआन गोमिंदांग को दबाने में कामयाब हो गया। इस दल पर प्रतिबंध लगा दिया गया और डॉक्टर सुन यात सेन को देश से निष्कासित कर दिया गया। 1916 में युआन की मृत्यु हो गई और चीन युद्ध नेताओं वार लॉर्ड्स के शासन में चला गया। इनमें से अलग अलग युद्ध नेताओं का देश के विभिन्न भागों पर नियंत्रण था और इन्हें विदेशी शक्तियों से वित्तीय सहायता मिलते रहती थी। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने पर चीन में राष्ट्रवादी तथा क्रांतिकारी आंदोलन का एक नया दौर आरंभ हुआ। 20वीं सदी के आरंभिक वर्ष आते आते उस्मानिया साम्राज्य अपने अधिकांश यूरोपीय प्रदेश खो चुका था। उसके उत्तर अफ्रीका स्थित प्रदेशों में भी काफी कुछ यूरोप की औपनिवेशिक शक्तियां हत्या चुकी थी। सीरिया, इराक, लेबनान, फिलिस्तीन और अरब इन पश्चिमी एशियाई देशों में भी राष्ट्रवादी भावनाएं उदित हो रही थी। स्वयं तुर्की के अंदर सुल्तान के जुल्मों के खिलाफ और तुर्की को आधुनिक लोकतांत्रिक तथा धर्मनिरपेक्ष देश बनाने के लिए जबरदस्त आंदोलन चल रहा था। इस आंदोलन का नेतृत्व बुद्धिजीवियों, सुधारकों और सैनिक अफसरों का एक समूह कर रहा था। ये लोग यंग टर्क अर्थात युवा तुर्क आंदोलन कहे जाते थे, अर्थात युवा तुर्क कहे जाते थे। 1876 में तुर्की में एक संविधान लागू किया गया था जिसे बाद में रद्द कर दिया गया। विद्रोह के डर एवं भय का कारण 1908 में सुल्तान ने फिर से उस संविधान को लागू कर दिया। कुछ युवा तुर्क उस्मानिया साम्राज्य के अरब लोगों को समान अधिकार देने के पक्ष में थे, जबकि कुछ अन्य चाहते थे कि तुर्की की श्रेष्ठता को कायम रखा जाए। अंत में युवा तुर्कों की विफलता के फलस्वरूप तुर्की को जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ होकर प्रथम विश्व युद्ध में उतरना पड़ा। उधर ब्रिटेन अरब देशों की उस्मानिया विरोधी राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काकर अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में सफल हुआ। अफ्रीका में उपनिवेशवाद का प्रतिरोध। 19वीं सदी का अंत होते होते यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियाँ अफ्रीका को लगभग पूरी तरह से आपस में बांट चुकी थी। उत्तर अफ्रीका के कुछ हिस्से इस बंदरवाट से जरूर बच गए थे, लेकिन 20वीं सदी के प्रथम चरण के अंत तक उन्होंने इन्हें भी हासिल कर लिया। तथापि अफ्रीकी प्रदेशों पर वास्तव में कब्जा करने में उन्हें काफी समय लगा, क्योंकि वहां उन्हें प्रबल प्रतिरोधों और विद्रोह का सामना करना पड़ा। इनमें से कुछ विद्रोह को दबाने में तो उन्हें काफी लंबा अरसा लगा। उदाहरण के लिए जर्मन एवं पूर्व अफ्रीका में 1905 से लेकर 1907 तक माजी माजी विद्रोह चला। अनेक एशियाई देशों के विपरीत अफ्रीका के अधिकांश देशों में आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही आरंभ हुआ। जब ये आंदोलन शुरू हुए तो उनके पीछे प्रतिरोध और विद्रोह की एक दीर्घ परंपरा की शक्ति विद्यमान थी। लैटिन अमेरिकी परिदृश्य। स्पेनी तथा पुर्तगाली साम्राज्यों के पतन के बाद लैटिन अमेरिका में 20 स्वतंत्र राज्य उदित हुए थे। 19वीं सदी के अंत तक उनमें से अधिकांश के अर्थतंत्र मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थे और बहुत ही पिछड़ी अवस्था में थे। उनमें से ज्यादातर राज्यों में भ्रष्ट अल्पतंत्रों का शासन था और वहाँ चूंकि कोई मजबूत सरकार नहीं बन पाई थी, इसलिए अन्य देशों के आर्थिक प्रभुत्व का प्रतिरोध भी नहीं किया जा सका। इन देशों के समृद्ध संसाधनों का उपयोग विकास तथा जन कल्याण के लिए नहीं किया गया, बल्कि ये यूरोपीय कंपनियों के हाथों बाद में अधिकाधिक परिमाण में अमेरिकी निगमों के हाथों बेच दिए गए। खानों, बागानों, रेल मार्गों, जहाजरानी, बिजली आदि प्राय सभी आर्थिक क्षेत्रों में विदेशी निवेश के कारण लैटिन अमेरिका पर संयुक्त राज्य के बढ़ते नियंत्रण तथा प्रभुत्व का जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। अधिकतर लैटिन अमेरिकी देशों की समाज व्यवस्थाएं घोर असमानताओं से ग्रस्त थी। कुछ देशों में तो दास प्रथा को फ्रांसीसी क्रांति के बाद समाप्त कर दिया गया था, लेकिन कुछ अन्य देशों में वह प्रथा संयुक्त राज्य अमेरिका में समाप्त होने के बाद भी कायम रही। उदाहरण के लिए ब्राजील में दास प्रथा का उन्मूलन 1888 में किया गया, लेकिन कुछ एक लैटिन अमेरिकी देशों में दास प्रथा के दीर्घकाल तक जारी रहने के बावजूद वहाँ वैसा नस्लवादी भेदभाव का अलगाव की भावना नहीं थी जो कि 20वीं सदी तक भी संयुक्त राज्य में कायम रही। लैटिन अमेरिकी देशों की आबादी में यूरोपीय मूल के लोग अफ्रीका से गुलाम बनाकर लाए गए काले लोगों की संततियां और अमेरिकी इंडियन तथा इन सब के मिश्रण से पैदा हुए लोग शामिल थे। बाद में एशियाई देशों के कुछ लोग भी वहां जाकर बस गए, लेकिन लैटिन अमेरिका की आबादी का आधे से अधिक हिस्सा मिश्रित नस्ल का था। जिन देशों में अमेरिकी इंडियनों की आबादी बहुत अधिक थी उनमें भी जैसे पेरू, इक्वाडोर, बोलेविया, कोलंबिया और वेनेजुएला में सारी सत्ता गोरे शासक समूहों के हाथों में केंद्रित थी। गोरे लोग बड़ी बड़ी जायदादों के मालिक होते थे, हालांकि वे स्वयं उन जायदादों पर मौजूद नहीं रहते थे। वे तो ऐशो आराम की जिंदगी बिताते हुए दूर बैठे बैठे ही सूत्र संचालन करते रहते थे। उधर मेहनत मशक्कत करने वाले अमेरिकी इंडियन घोर गरीबी का जीवन व्यतीत करते थे। केवल मैक्सिको ही एक ऐसा देश था जहां अमेरिकी इंडियनों सहित अन्य सभी नस्लों के लोगों ने मिलकर संयुक्त जन आंदोलन चलाए और सामाजिक असमानताओं को मिटाने, भूमि का न्याय सम्मत वितरण करने तथा जनसाधारण के समर्थन पर आधारित राज्य व्यवस्था का निर्माण करने में सफलता प्राप्त की। लेकिन इस देश को राजनीतिक उथल पुथल और संयुक्त राज्य के हस्तक्षेप के लंबे दौर से गुजरना पड़ा, जिसके बाद ही कहीं जाकर मैक्सिको की क्रांति के उद्देश्य कुछ हद तक फलीभूत हो पाए। अर्जेंटीना ने भी अपनी अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण में कुछ प्रगति की। जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ तब तक लैटिन अमेरिका के कई हिस्सों में लोकतांत्रिक आंदोलन छिड़ चुके थे। यद्यपि लैटिन अमेरिकी राज्य लगभग एक सदी से आजाद थे, तथापि वे अंतर्राष्ट्रीय जीवन के हाशिए पर ही खड़े रहे। उनमें कोई स्वतंत्र भूमिका नहीं निभा पाए। उद्योगिकीकरण के अभाव में वे कच्चे माल के संभारक बनकर रह गए थे। उनमें से कुछ अपनी शक्तिशाली पड़ोसी के हाथ लाभ के लिए एक फसली अर्थव्यवस्था वाले राज्य बन गए थे। इससे उनकी परास्रिस्तता और भी बढ़ गई थी। उत्तर अमेरिका और लैटिन अमेरिका के बीच इतना ज्यादा फर्क था कि वह हर एक को साफ नजर आता था। लैटिन अमेरिकी लोगों की आकांक्षाएं जाग रही थी और उसी के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ उत्तर के महाकार दानव के विरुद्ध उनका शत्रुता का भाव भी तीव्र होता जा रहा था।